और इसके बाद सामने वाले ने फोन काट दिया। शारदा जी फोन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम हो कौन? हेलो हेलो। पर सामने से कॉल कट चुकी थी। शारदा जी बहुत परेशान और बेचैन होते हुए अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थीं, लेकिन उन्हें अभय के कातिल के बारे में जानना था, इसीलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। शारदा जी ने देखा तो उनके पास सिर्फ 100 रुपये ही थे। इससे तो वो सिर्फ पुरानी फैक्ट्री तक जा सकती थीं, फिर वापस कैसे आएगी? इसीलिए शारदा जी ने कुछ सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने आवाज़ लगाकर किसी से दरवाज़ा खुलवाया और दरवाज़ा खुलते ही वो सीधे घर से निकल गईं। शारदा जी पैदल ही पुरानी फैक्ट्री की तरफ निकली थीं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि टैक्सी में वहां तक जा सकें, इसीलिए वो पैदल ही निकली थीं। 45 मिनट चलने के बाद वो पुरानी फैक्ट्री पहुँच जाती हैं। फैक्ट्री में पहुंचकर वो सीधे उसके अंदर चली जाती हैं। इस बीच एक भी समय ऐसा नहीं गया जब शारदा जी ने अपने उस छोटे से फ़ोन से उस नंबर पर फ़ोन ना किया हो, लेकिन हर बार की तरह वो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। लगभग शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे रात होने वाली थी। हर तरफ अंधेरा होने जा रहा था। पुरानी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद और सुनसान थी। दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन शारदा जी को इस वक्त इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो फैक्ट्री के अंदर चली जाती हैं। सामने एक बड़ा सा खाली हॉल दिखता है। शारदा जी वहां जाकर चिल्लाने लगती हैं, कोई है यहाँ पर? शारदा जी ने इस बात तक की परवाह नहीं की थी कि वो इस जगह पर अकेली हैं और ये सुनसान इलाका है, यहाँ पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अभय के कातिल के बारे में जानने के लिए इतनी बेताब थीं कि उन्होंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। वो धीरे धीरे उस फैक्ट्री के और अंदर आती जाती हैं। तभी उन्हें आसपास से कुछ खुसफुस आवाज़ आती हैं। वो पलटकर देखती हैं, पर वहां कोई भी नहीं था। शारदा जी हैरानी से उस खाली और बंद बड़ी फैक्ट्री को देख रही थीं। शारदा जी जब देखती हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके साथ मजाक किया है। उनका चेहरा गुस्से में भर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम जो भी हो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर डराने के लिए बुलाया है तो मैं तुमसे कह देती हूँ कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी उस खाली फैक्ट्री में से शारदा जी को अपने अलावा एक और आवाज़ आती है जो उनके पीछे से आई थी, जिसने शारदा जी से कहा, सच में तुम मुझसे भी नहीं डरती हो? इस आवाज़ के साथ ही शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो घबराहट के मारे धीरे धीरे पीछे पलटकर देखती हैं और एकदम से उनकी चीख निकल जाती है। सामने खड़ी औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शारदा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है। वो घबराहट के मारे उस औरत को देखती हैं और एकदम से चिल्लाते हुए कहती हैं, सीमा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों के सामने सीमा को देख रही थी। शारदा जी का पूरा शरीर डर से भर गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान मरकर वापस कैसे आ सकता है। ये सच में सीमा ही है या उनकी आंखों का कोई धोखा है? शारदा जी की हालत ऐसी हो रही थी कि वो किसी भी पल जमीन पर गिरने वाली थी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आने लगा था। अपने सामने वो सफ़ेद साड़ी में खड़ी सीमा को देख रही थी, जो अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए शारदा जी को देख रही थी। शारदा जी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में सीमा को देखकर कहा, तुम सच नहीं हो ना? तुम मुझे डरने की कोशिश कर रही हो? तुम सच नहीं हो? ये सच नहीं हो सकता है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? शारदा जी की बात सुनकर सीमा बहुत जोरों से हंसने लगी। उस पूरी फैक्ट्री में सिर्फ सीमा की हंसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शारदा जी का मजाक उड़ा रही है। सीमा शारदा जी को गुस्से में देखती और कहती है, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीमा की बात सुनकर शारदा जी का पूरा चेहरा डर से भर जाता है और वो घबराते हुए कहती हैं, तुम जिंदा कैसे हो? पर इससे पहले कि शारदा जी को अपने सवालों के जवाब मिल पाएं, उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, अरे कौन है वहाँ पर? शारदा की पलटकर पीछे देखती है तो पाती है कि इस कंपनी का चौकीदार वहाँ आया हुआ है। वो शारदा जी को देखकर कहता है, अरे मैडम आप अंदर कैसे आ गईं? शारदा जी घबराते हुए पहले तो उस चौकीदार को देखती हैं और फिर अपना चेहरा घुमाकर सीमा को देखती हैं, लेकिन सामने अब कोई भी नहीं था। जहाँ थोड़ी देर पहले सीमा खड़ी थी, अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि इस पूरे हॉल में सिवाय शारदा जी के दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। शारदा जी डरते हुए कहती हैं, भूत भूत। लेकिन चौकीदार शारदा जी के पास आता है और कहता है, क्या बोले जा रही हो मैडम? निकलो यहाँ से, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जाओ यहाँ से, यहाँ कोई भूत नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। शारदा जी कहती हैं, नहीं मैं सच कह रही हूँ। पर चौकीदार ने शारदा जी को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया और फैक्ट्री का गेट लगा दिया। शारदा जी घबराते हुए कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था, वो सीमा ही थी। धीरे धीरे सड़क पर अंधेरा हो रहा था और इस वक्त शारदा जी इस स्थिति में नहीं थी कि चलकर घर जा सकती हैं, इसीलिए उन्होंने टैक्सी में जाने का फैसला किया। वो एक टैक्सी पर जाती है, पर इससे पहले कि वो टैक्सी पर बैठ पाती, उसे सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ के पास सीमा खड़ी हुई दिखाई देती है। सीमा को देखकर वो फिर से डर जाती है। पर इससे पहले वो कुछ सोच पाती एक ट्रक रोड पर से गुजर जाता है, जिसके कारण शारदा जी सीमा को देख नहीं पाती है। और जैसे ही वो ट्रक निकल जाता है, शारदा जी देखती हैं कि उस तरफ कोई भी नहीं है। शारदा जी डर से कांप रही थी, तभी टैक्सी वाला कहता है, मैडम चलना है तो बैठो वरना मैं जा रहा हूँ। शारदा जी जल्दी से टैक्सी में बैठ जाती है और टैक्सी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही झाड़ियों के बीच में से एक औरत बाहर निकलती है। वो अपनी साड़ी में छुपा हुआ फोन निकालती है और किसी को कॉल करते हुए कहती है, सर काम हो गया है, इस नकली चेहरे को देखकर तो उसे असली हार्ट अटैक आ गया था।